नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उन्होंने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। ये भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ये आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और शासन को और अधिक सक्षम बनाना है। इस अवसर पर श्री मोदी शाम को एक सभा को संबोधित करेंगे। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में आज भी बाधा आई। दोनों सदनों को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान में वर्ष 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की ओर से श्री बिरला ने विश्व को जन विनाश के हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और स्वाद सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है।
राज्यसभा के कामकाज में भी आज बाधा आई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। उनका कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। उपसभापति हरवंश ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले थे जिन्हें नियमों का हवाला देते हुए नामंजूर कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। श्री हरवंश ने कहा कि शून्यकाल में कई सदस्य जन महत्व के तत्काल मुद्दों को उठाना चाहते हैं और ऐसे में व्यवधान डालना उचित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। जीडीपी दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75% रहेगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीर गंगा नदी पर बादल फटने के बाद आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से स्थिति की समीक्षा की।
काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा।
इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित यूपीएससी भर्ती विज्ञापनों के बारे में सीधे ईमेल अलर्ट प्राप्त करने की एक सुविधा शुरू की है। ईमेल अलर्ट सेवा की सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थान ruplc@uv.in पर सदस्यता अनुरोध भेज सकते हैं। रूस के कामचात्का प्रायद्वीप में क्लूचेवस्कॉय ज्वालामुखी के पास बांध टूटने की खबर है। इसके बाद क्षेत्र में यातायात बाधित होने की संभावना बढ़ गई है। ये बांध वर्ष 2023 में स्टूडेनिया नदी की दो धाराओं में विभाजित करने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कल मॉस्को में वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और भारत रूस रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।